अब आगे बताया गया, इतने बड़े बादशाह को छोड़ के बाज लोग आम इंसानों के पास तलाश करते हैं इज्जत, उनसे दोस्तियां करते हैं, उनको एलाइज बनाते हैं, उनके साथ गहरे रवाबित रखते हैं। किस लिए? कि उनको लगता है कि इज्जतें यहां से मिलेंगी। क्योंकि ये आजकल कोई बोले वर्ड तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये आजकल सुपर पावर है, या इनका तोती बोलता है दुनिया में, या ये बहुत बड़े समझे जाते हैं, या इनके साथ बैठूंगी, इनके साथ मरासिम बनाऊंगी, इनके साथ ताल्लुकात रखूंगी कि तो मैं भी बड़ी समझी जाऊंगी। तो अल्लाह ताला ने बता दिया यहाँ पे कि काफिरों के साथ दोस्ती करना किस हद तक जायज है, की भी जा सकती है या नहीं। इसका जवाब क्या है? ला यत्तखिदुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, ना बनाए मोमिन काफरों को औलिया। औलिया ना बनाना। औलिया क्या होता है? वली की जमा औलिया होता है। और वली किसको कहते हैं? जो हिमायती हो, प्रोटेक्टर, मददगार, गहरा दोस्त, दिली दोस्त, जो हमदर्द। ठीक है, यानी ये बहुत ऐसी दोस्ती के बारे में आता है जो जिसको आप कहते हैं ना दिली मोहब्बत, जिनके साथ होती है। अल्लाह ताला ने बता दिया इनको आप काफिरों को दिली दोस्त नहीं बना सकते, मोमिनों को छोड़ के। जाहिर ही बात है, काफिरों से दोस्ती इतनी गहरी करनी होगी तो उसके लिए मोमिनों से दोस्ती छोड़नी पड़ेगी ना। दोनों दोस्तियां साथ तो नहीं चल सकती हैं, दोनों ऑपोजिट रास्ते हैं। तुम तो अल्लाह के दुश्मनों के साथ इतनी गहरी दोस्तियां गांठ के नहीं रख सकते। ईमान और कुफर का कोई जोड़ नहीं है, इसलिए कि दोस्ती जो होती है ना, जो विलायत होती है, वो कॉमन ग्राउंड्स पे होती है। क्या चीज है कॉमन मोमिन में और काफिर में? कुछ भी नहीं। ना लाइफस्टाइल कॉमन है, ना उनके अकीदे कॉमन है, ना उनकी सोच कॉमन है, ना उनके गोल्स कॉमन है। क्या कॉमन है फिर? लेकिन लोग क्यों रखते हैं ये ताल्लुकात? बास तो मैंने आपको बताया कि कोई इज्जत लेने के लिए, आजकल के वक्त में तो ज्यादातर यही है ना, कोई ओहदे लेने के लिए, कोई और मफाद अपने, कोई फायदे अपने, बेनिफिट्स अपने लेने के लिए उनके साथ गहरी दोस्तियां रखते हैं। बास जगह पे ये भी होता है, फैमिली ताल्लुकात हैं, कहीं कुछ और कोई एक रिवर्टेड हो गया, बास लोग उनकी फैमिलीज वैसे ही रहती हैं, तो उनके साथ फिर क्या ताल्लुकात रखें? और कोई किसी के साथ कोई खरीदना बेचना है, कोई कुलीग्स हैं, कोई क्लास फेलो हैं, कोई टीचर है, कोई मतलब कितने सारे, आप जब गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हैं तो आपका इंटरेक्शन तो होता है, तो उसमें अब क्या तरीका कार इख्तियार किया जाएगा? तो इसका भी हमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से जो रहनुमाई मिलती है उसके अंदर ये है कि देखिए, ताल्लुकात सबके साथ क्या एक जैसे होते हैं? मसलन आपके जो बहन के साथ ताल्लुकात होंगे वो हमसाई के साथ अलग होंगे, बहन के साथ अलग होंगे, दोस्त के साथ अलग होंगे, जो क्लास में और लोग आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ अलग होंगे। तो ताल्लुकात की किस्में होती है ना, तो इसी तरह जो गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात है ना, उनकी भी किस्में, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली किस्म, जैसे ये यहाँ पे मवल्लात कहा गया, विलायत का, दिली दोस्ती का गहरा ताल्लुक, वो तो नहीं हो सकता काफरों के साथ। ठीक है, नंबर टू है मवासात, मीम वाव अलिफ सीन अलिफ ता, मवासात यानी हमदर्दी का, खैर ख्वाही का, दूसरे का भला चाहना। ये सब इंसानों के साथ ही करना है, इसके अंदर काफिर हो। फिर ये नहीं कहना कि नहीं वो जो है ना ये काफिर हैं, हमने इनके साथ तो कोई हमदर्दी भी नहीं रखनी, इनके मुंह पे थूको और इनको बुरा भला कहो। नहीं, उनका भी भला चाहेंगे, खैर ख्वाही होगी तो उनको दावत देंगे ना दीन की। फिर तीसरा दर्जा है मदारात का, जिसको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ये जाहिरी खुशखलकी, दोस्ताना बर्ताव, जिसमें अलैक सलैक है, जाहिर का ताल्लुक, ये सारी चीजें तो होंगी। अच्छे अखलाक से पेश आना, ये भी सही है। फिर है मामलात, वर्किंग रिलेशनशिप्स। आपने किसी के साथ मसलन ये सारा जो मैंने आपको बताया कि कोई आपके कुलीग हैं, कोई आपके हमसाए हैं, ये सारे हैं, उनके साथ कोई मामलात करने हैं, वो भी सही हैं। खास तौर पे बिजनेस रिलेशनशिप्स होते हैं, और या आपके बॉस है या कोई आपके अंडर काम करता है, तो सब जायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो यहूदी लड़के की बीमार पुरसी करने गए थे ना, मैंने आपको सुनाई थी वो हदीस और उसको इस्लाम की दावत दी थी, तो वो यहूदी लड़का था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काम करता था, तो जब वो बीमार हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बीमारी में उसको देखने भी गए थे। तो ये जाहिर है एक हमदर्दी का, खैरख्वाही का दूसरों के लिए जज्बा है। अब ये देखें, इसमें ये नहीं है कहीं कहा गया कि आपने कट ऑफ हो जाना है, आपने इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, कोई बात नहीं करनी, ये नहीं कहा गया। वो तो ताल्लुकात जाहिर है रहेंगे, आप दुनिया में रहेंगे, उनके साथ ताल्लुक भी होगा, उनके साथ बातचीत भी होगी, लेकिन फिर वो ताल्लुक विलायत तक ना पहुंचे कि फिर इंसान इतना ज्यादा आगे बढ़ जाए कि उनके ऊपर भरोसा कर रहा है, या उनके साथ ऐसे कि उठना बैठना, खुशी गमी, उनके शादी ब्याह, उनके हर चीज के अंदर हम नवाला हम प्याला जिसको कहते हैं, इस तरह की दोस्ती वो नहीं रख सकते। हाँ वैसे अगर देखें बस आप माशरती माशरे में रहते हैं तो जाहिर ही बात है उनके साथ कर्ज का लेन देन भी हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज भी लिया था यहूदी से, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी तो एक जरा उसके पास रहन रखी भी थी, ताजियत भी कर सकते हैं उनसे। इसी तरह हजरत सहल और कैस बिन साद कादसिया में बैठे हुए थे तो उनके पास एक जनाजा गुजरा, वो दोनों खड़े हो गए तो उन्हें बताया गया कि तो एक जिम्मी का जनाजा था, यानी वो गैर मुस्लिम था। उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा गुजरा था, आपसे कहा गया ये एक यहूदी का जनाजा है, तो आपने फरमाया क्या ये रूह नहीं है? तो मतलब इंसान है ना, इंसान की उसकी ताजी है। ये सही बुखारी में है रिवायत, तो जनाजे में तो नहीं शामिल होना लेकिन उसकी इज्जत है एक, तो इसलिए यानी ये नहीं आप कह सकते कि नफरतें करें, नफरतें फैलाएं, ये चीज नहीं है। क्योंकि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानी दुश्मनों के साथ, जानी दुश्मन तो काफिर ही थे ना, उनके साथ भी रहम का मामला किया। मक्का में जब कहत पड़ा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदम डोनेट की थी, और आपने अभी पिछली आयात में पढ़ ही लिया ना कि गैर मुस्लिमों को आप डोनेशन भी दे सकते हैं, डोनेशन क्या, डोनेशन उस लिहाज से कि चैरिटी उनके ऊपर कर सकते हैं। तो अगर मसलन है कि कोई यहाँ पे कोई सुनामी आता है, कोई यहाँ पे दुनिया में कोई ऐसा हरिकेन आ जाता है, कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, तो ये नहीं कि ये अब काफिर है, हमने तो इनके साथ नहीं कुछ भलाई करनी, ये सही नहीं है। कहे तो उन्हीं के ऊपर पड़ा था ना जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया इन्होंने तो हमें निकाला था हम क्यों उनकी मदद करें, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए डोनेट किया गंदा। इसी तरह मक्का फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ कर दिया था, जंगी कैदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सलूक किया था ना बदर में कि ह्यूमन हिस्ट्री में इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। इसी वजह से इस्लाम फैला भी, इस्लाम जो है ना इंसान दोस्त दीन है, और आज हम नफरतें फैलाने वाले हैं, नफरतें करने वाले हैं, इसी वजह से फिर देखें कि आज ये हाल है कि फिर हमें नफरतें ही मिलती हैं। तो इस्लाम इंसानों के साथ हमदर्दी का, खैरख्वाही का हुक्म देता है। हाँ मगर ये है कि कोई ऐसे अगर काफिर हैं जो आपके साथ जंग कर रहे हैं, जो आपके साथ आमने सामने जंग है, तो जाहिर है उनके साथ तो नहीं ऐसा मामला होगा, फिर तो जाहिर है जंग के मौके पर जंग ही होगी, लेकिन जो आम लोग हैं उनके साथ फिर इसी तरह मामला किया जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह मुमतहिना में आयत नंबर 8 आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन काफिरों के साथ नेकी और अदल का बर्ताव करो, किनके साथ, जिन्होंने तुम्हारे दीन के मामले में जंग तुमसे नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है, तो अल्लाह तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं नेकी करने से रोकता, अदल करने से नहीं रोकता, नेकी और अदल सबके साथ होगा। अब इन्होंने अगर आपके साथ जंग नहीं की, आपको आपके घरों से नहीं निकाला, तो फिर आप उनके साथ मामला करेंगे। इसी तरह अगर किसी के रिलेटिव है तो आप देखें कि हजरत अस्मा जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी कि मेरी वालदा काफिर है, मुशरिका है, तो वो मेरे पास आई है तो मैं उनके साथ क्या अच्छा सलूक करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अपनी माँ से सिला रहमी करो, ये बुखारी में है। और ये भी आया कि वो इनके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई थी, घी लेकर आई थी और सब्जी कुछ और चीजें, तो उन्होंने हजरत असमा ने उनका ये गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। और उनको अपने घर आने से भी मना कर दिया। तो उसके बाद फिर ये आयत उतरी थी सूरह मुमताहिना की, जो अभी मैंने आपको बताई है कि आप इनके साथ अदल करो, नेकी करो उनके साथ। ये चीजें हमें फिर, क्योंकि हम अक्सर जब ऐसे मुल्कों में रहते ना, तो फिर हमें समझ ही नहीं आती हम इनके साथ क्या करें, ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी तरह आप देखिए, रोम के बादशाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ गिफ्ट्स भेजे थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में तकसीम कर दिया था, यानी एक्सेप्ट किया था उनका गिफ्ट। तो हमें इन सब बातों से यह रहनुमाई मिलती है कि ठीक है आप रखें ताल्लुकात, मगर विलायत का ताल्लुक नहीं रख सकते। उसकी क्या वजह है? गहरी दोस्तियां नहीं रख सकते। ये क्यों कहा गया? देखें, जो भी दोस्त होता है ना, उसका इंसान की जिंदगी पे बहुत गहरा असर होता है। तिर्मिज़ी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है, लिहाजा हर आदमी को अच्छी तरह देखना चाहिए कि वो कैसे अपना दोस्त, कैसे लोगों को अपना दोस्त बना रहा है, किसे अपना दोस्त बना रहा है। तो चाहे आप वो कोई काफिर है, चाहे इवन ये भी लोग जो के दीन से हटे होते हैं, जिनको दीन की कोई परवाह नहीं है, दीन के अहकामात की कोई परवाह नहीं है, उनसे भी दोस्तियां से बाज रहे इंसान तो बेहतर है। क्योंकि देखें, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है। अगर वो है अल्लाह की नाफरमानियां करने वाले, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाले, तो फिर आप भी वैसे ही हैं। क्योंकि अगर आपको गैरत नहीं आती कि वो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहे हैं और आप उनके साथ दोस्तियां बना के बैठे हुए हैं, आपको कोई इसके ऊपर एक वो नहीं, ईमानी गैरत अगर आपको महसूस नहीं होती, तो फिर क्या ईमान है? फिर आप भी वैसे ही हुए ना। वो अब ये इंग्लिश की भी तो एक वो है ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है ना। तो अगर जैसा वो है फिर वैसे आप। तो इसलिए नेक लोगों की दोस्तियां रखनी चाहिए। और कहां ये कि काफिरों को कोई दोस्त बना लेता है, तो अब आप खुद सोचे, जिसने काफिर को दोस्त बना लिया तो वो काफिर कुछ ना कुछ तो असरअंदाज होगा ना, जब उसके साथ गहरी दोस्ती होगी, एक ही बस मतलब जिसको हम बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं या क्लोज फ्रेंड्स कहते हैं, तो फिर लोग ऐसे फिर उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, फिर कहते हैं अब क्या करें, अब ये हमें ऐसी अपनी गैदरिंग्स में बुलाते हैं, ऐसी पार्टीज में बुलाते हैं जहां पे ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हमारे फ्रेंड्स हैं, सो व्हाट, फ्रेंडशिप है ना। तो इसीलिए तो कहा गया कि नहीं, ऐसे लोगों को आप ऐसा गहरा फ्रेंड्स नहीं बना सकते, क्योंकि ईमान सबसे कीमती चीज है। अगर आपको इसकी कदरों कीमत पता हो ना, तो आप एट एनी कॉस्ट कोई भी ऐसा काम, ऐसी चीज, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेंगे जहां पे आपके ईमान में कमी आए या ईमान बचाना मुश्किल हो जाए। कि आपके लिए सबसे प्रेशियस चीज ईमान होगी, लेकिन जिसको अपने ईमान की कोई कोई कुछ उसको ईमान कोई कीमती चीज लगता ही नहीं है, उसको क्या परवाह है। तो ईमान जाता है जाए, ईमान कम होता है तो कम हो, कोई बात नहीं। हमारे फ्रेंड्स तो हैं ना, इनसे हम फ्रेंडशिप नहीं छोड़ सकते। तो याद रखें, फिर कयामत के दिन सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने ऐसा नक्शा खींचा है, सुभान अल्लाह, आयत 27-28 में, कि जालिम ना उस दिन अपने हाथों को चबाएगा, काटेगा अपने हाथों को और कहेगा, हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फुलां को अपना दोस्त ना बनाया होता, अरे काश मैंने उसको अपना दोस्त ना बनाया होता। वो इतना रिग्रेट करेगा, क्योंकि दोस्त, जाहिर है दोस्त ने उसके ऊपर असर किया, दोस्त के साथ उठने बैठने से उसके अपने दिल में भी दीन की कोई अहमियत नहीं रही, वो अपने दीन के बारे में भी डाउटफुल हो गया, कई जहन में बातें आने लगी, कई क्वेश्चंस जो वो दोस्त ने किए, भाई तुम्हारे तो प्रॉफिट का ये पता चलता है, उन्होंने तो इतनी शादियां की, उन्होंने तो इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली, तुम्हारे दीन में ये क्या बात हुई, तुम लोग पीरियड्स में नहीं पढ़ सकते नमाज, और ये उस वक्त नहीं तुम कर सकते, ये कौन सी ऐसी, ये तो पुरानी बातें हो गई और अब तुम लोग ये बातें करते हो, और तुम्हारे दीन तो फिर लड़ाई और तलवार और मार कुटाई का मजहब है। तो अब इंसान आहिस्ता 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 इस प्रोपोगंडा से इतना मुतासिर हो जाता है कि उसको खुद भी ये दिल में बातें आने लगती, हाँ वाकई मेरा दीन तो ऐसा है। इसी वजह से तो अल्लाह ताला रोकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दी इसलिए कि देखिए, इस तरह से इंसान के जहन में भी नेगेटिव चीजें आने लगती। तो इवन काफिर तो क्या, ऐसे भी लोग जो दीन से हटे हुए हैं उनके साथ भी आप दोस्तियां ना ज्यादा गांठे। ये बस ये नहीं कि कभी उनसे ताल्लुकात तोड़ने को नहीं कहा जा रहा, विलायत को अगर आप वर्ड को समझ जाए ना तो फिर आपको ये बात सारी समझ आ जाएगी। विलायत नहीं रखनी, ठीक है, ऐसी गहरी दोस्तियां नहीं गांठनी, वरना एक ना एक दिन आप या तो उसको अपने रंग में रंग लेंगे या वो आपको अपने रंग में रंग लेगा। लेकिन अगर देखिए कितने बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं ना, अगर उसने आपको अपने रंग में रंग लिया तो आप किधर के रह जाएंगे? ईमान चला गया, आखरत चली गई, आखरत की नाकामी का सबब बन सकता है ये। तो दोस्ती का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जहां से आपका ईमान बढ़े, ईमान आपका ज्यादा हो, जहां पे अल्लाह की मोहब्बत बढ़े आपके दिल के अंदर, वहां पे दोस्ती लगाएं। और बुरे दोस्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पनाह चाहिए। देखिए मसनून दुआओं में है, अल्लाहुम्मा इन्नी आउधु बिका मिन यौमिस सू, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ यौम सू से, बुरे दिन से, व मिन लैलत सू और बुरी रात से, व मिन सात सू बुरी घड़ी से, व मिन साहिबिस सू, ए अल्लाह बुरे दोस्त से। बुरा दोस्त इंसान को डबो देगा, तो बुरे दोस्त से भी अल्लाह की पनाह मांगा करें। वा मिन जारे सूफी दारिल मुकामा, और अल्लाह बुरे हमसाए से भी तेरी और बुरी घर से तेरी पनाह मांगती हूँ। तो ये इससे पता चलता है बुरा दोस्त इतना यानी इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला यतखिदुल मुमिनुल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, मोमिनों को छोड़ के तुम जा जाके काफिरों के साथ क्यों दोस्तियां करते हो, मत दोस्ती करो उनके साथ। वमन यफअल ذلك, जो ऐसा करेगा, फलैस मिन अल्लाह फी शयइन। देखिए कितनी बड़ी ये बात कह दी गई, जो ऐसा करेगा ना फिर भी कहेगा नहीं जी हम तो दोस्तियां नहीं छोड़ सकते, तो फिर अल्लाह के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई किसी चीज पे नहीं है का मतलब क्या, अल्लाह के साथ फिर इसका कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, अल्लाह के दीन के साथ यानी इसका कोई ताल्लुक नहीं, फिर नहीं आपने मोहब्बत के दम भरे दीन के साथ और अल्लाह के साथ। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकातन, सिवाय इसके कि तुम बचो उनसे बचना। एक एक्सेप्शन हाँ है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हाँ आपको जो उनके साथ जाहिरदारी रखनी पड़ेगी या फिर उनके साथ ताल्लुक रखना पड़ेगा, वो कब है कि तुम बचो उनसे या तुम डरो उनसे, कि तुम्हें खतरा हो अपनी माल का, जान का, इज्जत के नुकसान का खतरा हो तुम, कि कुछ ऐसा मसला हो सकता है तो तुम जाहिरदारी उनके साथ रख सकते हो, लेकिन फिर वो खतरा हकीकी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि जैसे हम सारे तो हर टाइम डरे रहते हैं। आजकल मुसलमानों का हाल क्या, बस इनके दिमागों पे एक खौफ ही सरत है, हाँ पता नहीं वो हमें क्या कर देंगे, हाय वो हमें नोट कर रहे हैं, वो इतने डरे रहते हैं। अल्लाह अकबर, मतलब तो ऐसु मन तशाओ तो दिलु मन तशाओ, अगर इस पे ईमान है ना, मत डरो किसी से, मत डरो, ये डर निकाल दो दिल से। अगर हमने कुरान सीखने के लिए कोई क्लास ले ली तो पता नहीं हमारा नाम कहाँ पता चल जाएगा और किसको और कौन हमारे पीछे लग जाएगा और हम पता नहीं क्या हो जाएंगे। अगर मस्जिद ज्यादा गए तो गाड़ियों के नंबर नोट हो रहे हैं और फिर पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाना है। ओ अल्लाह अकबर, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह के हाथ में सारी खैर है, अल्लाह के हाथ में इज्जत और जिल्लत है, अल्लाह के हाथ में बादशाहत है, क्यों डरते हो? तो ये बात है कि ये जो आपके अपने जहन की एक बातें होती है ना, एक खौफ बस खाम खा का हर वक्त हमने अपने ऊपर तारी किया हुआ, ये नहीं। अगर वाकई कोई ऐसा आपको श्योर 100% हो जाए कि कोई ऐसा खतरा है जो कोई माल को, जान को, इज्जत को हो सकता है, तो फिर उनके साथ एक जाहिरी ताल्लुक रख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी को जान जाने का खतरा हो तो फिर कलमा कुफर भी कह सकता है, फिर और क्या है, तो इंतहाई मजबूरी की हालत हो तो। وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, अल्लाह डराता है तुमको अपनी जात से। देखो याद रखो, अल्लाह को पता है कि ये वाकई खतरा है तुम्हें या तुम ऐसे ही ऊपर ऊपर से लगा के सिर्फ उनसे ताल्लुकात रखना चाहते हो, कोई मफाद अपना हासिल करना चाहते हो। और अपने दीन पे कॉम्प्रोमाइज चाहे कर लोगे लेकिन उनसे ताल्लुक नहीं छोड़ रहे, अल्लाह को सब पता है। जहां पे तुम अपने दीन पे अमल ना कर सको वो ताल्लुक नहीं रखना, वो ताल्लुक मना है। हम कहते हैं नहीं हमें नहीं कोई असर होता, हम तो बिल्कुल बहुत पक्के हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम काफिरों से भी दोस्ती कर लेते ना कुछ भी नहीं हमें फर्क पड़ता। नहीं, आप विलायत कर ही नहीं सकते। हाँ दावत दें वो खैर खाई से होगी, उसके लिए विलायत की क्या जरूरत है कि आप बेस्ट फ्रेंड बन के बैठ जाए। तो याद रखो अल्लाह तुम्हें अपने नफ्स से डराता है यानी अपने अजाबों से डराता है। तुम्हें तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आपने नोट किया है कि ये आयत इज्जत जिल्लत की आयत के फौरन बाद आई है, नोट किया ना आपने? क्योंकि इंसान इन्हीं इज्जत के लिए और बादशाहत के लिए, इक्तदार के लिए और इनसे इनके लिए ये इनसे ताल्लुकात रखता है ना। ठीक है, और किसी भी गैर मुस्लिम से अब मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना होना चाहिए कि जिससे मेरा दीन ना जाए, दीन को कोई फर्क ना पड़े और वो मेरे दीन का मजाक ना उड़ाता हो, मेरे दीन के ऊपर उंगली ना उठाता हो। और दावत देने की नीयत होनी चाहिए। वा इलल्लाहिल मसीर, याद रखो तुम्हारा लौटना अल्लाह की तरफ है, जब पलटेंगे तो वहीं जाना है तुम्हें और वहां हिसाब होगा। कुल इन तुख्फु मा फी सुदूरिकुम औ तुबदूहु यअलमुल्लाह, याद रखो तुम दिल में चाहे छुपा लो कोई बात या उसको तुम जाहिर करो। इंसान दिल में कब छुपाता है? जब उसको ये होता है कि मैं ये बात छुपा लूंगा तो किसी को भी नहीं पता चलेगी, शायद अल्लाह को भी नहीं पता चलेगी, नाउजुबेला, और मुझे अगर इन मैं इनसे हमदर्दी रखती हूँ, मोहब्बत रखती हूँ, दिली ताल्लुक रखती हूँ, ये भी शायद अल्लाह को पता ही नहीं चल रहा, और ये मुझे वाकई कोई खतरा है उनसे, या मैं ऐसे बहाने बना बना के उनसे विलायत के ताल्लुकात रख रही हूँ, सब अल्लाह को पता है जो भी दिलों में छुपा हुआ। और अल्लाह ताला को वो भी पता है जो तुम जाहिर करते हो। जाहिर इंसान किन चीजों का करता है? अक्सर उन्हीं चीजों को जाहिर करता है जिनसे उनको लगता है कि मेरी इज्जत बढ़ेगी या लोग मुझे बड़ी चीज समझेंगे। अल्लाह उसको जानता है, वयालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और वो उसको भी जानता है जो आसमानों में और जो जमीन में। अल्लाह का इल्म कामिल है, कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं। थोड़ी देर के लिए गौर करें, कोई चीज अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं, इसका मतलब है हमारे आमाल का एक एक अमल, एक एक बात, हम कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, एक साल के बाद क्या करेंगे, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद, 1000 साल के बाद क्या करेंगे, क्या होगा हमारा, एक एक इंसान, एक एक जानवर कौन क्या करेगा, कोई चीज अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं। जमीन और आसमान में कोई चीज बाहर नहीं, तो बच के फिर कैसे जाएंगे, भाग के फिर कैसे जाएंगे? सोचें, अगर हमारे अंदर की गंदगियों का अल्लाह को पता है, और ऑफ कोर्स पता है, तो हम कहां के रह जाएंगे? अल्लाह तो सब जानता है, फिर उसकी नजरों से अगर हम गिर गए तो किधर ठिकाना पाएंगे? जो हमारे दिलों के अंदर है ना, जो छुपाते हो तुम, गंदगियों को ही छुपाते हैं ना, किसी को ना पता चल जाए, किसी को ना पता चले मेरे दिल में ये है, तो अल्लाह को तो पता चल गया वह, फिर दूसरों की नजरों में हम चाहे इज्जत वाले बन बन के फिरते रहे, अल्लाह की नजरों में गिर जाते हैं। और दुनिया में तो अगर कुछ नजरों में गिर गए तो कुछ की नजरों में अच्छे भी होंगे, मगर उस कायनात का मालिक तो जो एक ही है, उससे अगर गिर गए नजरों से तो फिर किसी और की नजरों में उठ भी गए तो कोई फायदा नहीं, जिसे हम कुछ छुपा ही नहीं सकते हैं। अब छुपा नहीं सकते तो फिर अपने अंदर की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी डीप जाके छुपा लें उसको पता है। वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ताला इस बात का यकीन हमें अता फरमा दे कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हम सबको ये बात याद होती है जुबानी, किसी से भी सुन ले कहेगा अल्लाह वाला कुल्ली शैन कदीर, हर एक को इसका तर्जुमा भी पता है, वो भी नहीं बताने की जरूरत। मगर क्या इसका यकीन है उस तरह से जैसे होना चाहिए कि वाकई अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कोई बीमार है, आखिरी सांसों पे है, अल्लाह इस पे कादिर है कि उसको दोबारा जिंदगी दे दे। कोई बे औलाद है, सारे डॉक्टरों ने कह दिया इसको औलाद नहीं हो सकती, अल्लाह इस पे कादिर है कि इसको औलाद दे दे। किसी का ऐसा बड़ा मसला है कि वो सोचता है कि ये कभी हो ही नहीं सकता, ये मेरा मसला हल नहीं हो सकता, मेरे गम कभी दूर नहीं हो सकते, अल्लाह इस पर कादिर है कि उसके गमों को दूर कर दे। अल्लाह हमें इसका यकीन अता फरमा कि वाकई तू हर चीज पर कादिर है। ये यकीन हम हमारे दिलों में ना रासिख नहीं होता। यौमा तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा आमिलत मिन खैरिन मुहदरा, जिस दिन पाएगा हर शख्स जो उसने अमल किया होगा नेकी में से, मुहदरन हाजिर किया हुआ, वमा आमिलत मिन सुइन, और बुराई में से भी। अगर इसको यहां पे हम पॉज करेंगे तो क्या मतलब बनेगा कि जिस बंदे ने नेकी की होगी नेकी को भी सामने पालेगा, और जिसने जो बुराई की होगी उस बुराई को भी वो सामने पालेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं आमल मिसकाला दर्रतिन खैरा यरा, जो नेकी की होगी वो भी देख लेगा, उसको सामने होगी, और बुराई भी है वो भी सामने होगी। और अगर हम यहाँ पे स्टॉप करें मिन खैर मुहदरन और कहें वमा आमिलत मिन सुइन तवद्दू, जिसने बुराई की होगी वो चाहेगा लव अन्ना बैनहा व बैनहु अमदन बाईदन, के काश उसके दरमियान और उसके इस अमल के दरमियान, कौन सा अमल, जो ये बुराई का अमल है, बुरा अमल है, फासला होता दूर का। अरे इंसान उस दिन कहेगा ये बुराइयां ये गुनाह जो आज हम लज्जत ले लेके करते हैं ना, जिसमें बड़ा मजा आता है, जिसमें फन है, जिसमें फैशन है, जिसमें अप टू डेट होना है ना, जिसमें ब्रॉड माइंडेड होना है, रोशन ख्याल कहलाने के लिए जो हम काम करते हैं, जो हम लोगों की नजरों में बड़ा बनने के लिए गुनाह करते हैं, जो हम लोगों की नजरों में इज्जत पाने के लिए अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, जो हम अपनी खुशियों के वक्त में और अपने दुखों के वक्त में अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हैं ना, और आज बहुत खुश होते हैं इस बात पे, सारी बरादरी को खुश करते हैं, अल्लाह को नाराज कर देते हैं। इंसान उस दिन अपने उन्हीं अमाल से ये चाहेगा कि अल्लाह इतने दूर हो जाए ये अमल, इतने दूर हो जाए, मुझे दिखाई भी ना दे, इतना डिस्टेंस हो जाए मेरे और इस अमल के दरमियान, मुझे नजर भी ना आए, इतना ज्यादा वो इन आमाल से खौफ ज़दा भी होगा, क्योंकि दूर क्यों कर चाह रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि अल्लाह, जैसे कोई चीज होती ना बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है ना, क्यों करता है, वो सोचता है कि ये बस है ही नहीं है, उसको खतरा, उसको खतरा है इनसे, उसको पता है कि ये मेरे आमाल मेरे लिए आज मुसीबत बनने वाले हैं, है मुझे नजर भी ना आए। कोई चीज आपको बहुत एकदम डराती ना तो आप कहते हैं मुझे नजर भी ना आए, दूर हो जाए मेरी नजरों से, वो ये चाहेगा अपने इन अमाल के लिए, हाय ये अमाल मुझे नजर ना आए। तो दुनिया में तो तुम कितनी खुशी खुशी ये अमल करते थे, तुम्हें बड़ा मजा आता था, तुम्हें इन कामों का चस्का पड़ गया था, दुनिया में तो तुम कहते थे मैं ये नहीं छोड़ सकती, हाय आज उन्हीं अमाल को तुम कहते हो मुझसे दूर हो जाए, दुनिया में तो सीने से लगाए हुए थे ये गुनाह और कहते थे कि हाँ बस ये काम ना ये नहीं मुझसे छोड़ा जाता, बस बाकी चीजों को तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन बस ये क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह ताला के इतनी इतनी चीजों को देखेगा। नहीं, उस दिन इंसान खुद ही इनसे डर रहा होगा, अपनी बदामालियों से खुद ही भागेगा, इनसे इतनी नफरत होगी कि कहेगा हाय दूर हो जाए। इसीलिए तो इंसान कहेगा ना सूरह नबा में, कि इंसान कहेगा काश जमीन फट जाए और मैं इसके अंदर चला जाऊं। जैसे दुनिया में इंसान की कहीं बदनामी हो कहीं रुसवाई हो तो इंसान कहता ना हाय जमीन फट जाए, मेरा दिल चाह रहा था कि उस वक्त जमीन फट जाए और मैं इसमें चली जाऊं, इतनी बेइज्जती हो रही थी। तो दुनिया में इन गुनाहों को इंसान इतना महबूब रखता है, छोड़ता नहीं है, दिल नहीं चाहता ना छोड़ने का, मगर उस दिन गुनाह साथ चिपकेंगे और इंसान कहेगा हाय दूर हो दूर हो दूर हो। हो अकबर, सोचें अपने इन सब गुनाहों के बारे में जिनको आज छोड़ना मुश्किल है, और उस दिन इंसान सोचेगा हाय यही मेरे सामने ना हो, यही मेरे से दूर हो, काश मेरे और इनके दरमियान इतना फासला हो जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान, इतना फासला हो जाए। अल्लाह हू अकबर। तो अगर उस दिन दूर करना चाहोगे तो आज क्यों नहीं दूर कर लेते हैं? जरूर अपने एक एक गुनाह पर निगाह डालें, कल मैं कौन से गुनाहों को अपने से दूर करना चाहूंगी जिनको आज मैंने सीने से लगाया और जिनको आज मैं छोड़ नहीं पाती, क्या उस दिन भी मैं ये बर्दाश्त कर सकूंगी कि ये मेरे साथ चिमटे हो? सोचे यही गुनाह आग बन जाए तो हम कभी बर्दाश्त करेंगे कि आग लिपटी हो हमारे साथ? तो वो जाहिर है उस दिन नजर आ रहे होंगे कि ये आग है, बस ये अब मुझे आग में लेके जाएंगे। इंसान इसलिए ही चाहेगा कि बस अब ये दूर हो जाए। इसीलिए एक मसनून दुआ भी है ना, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका जो हम पढ़ते हैं, तो वो भी पढ़ी और ये भी पढ़ी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअत्ता बैन अल मशरिकी वल मगरिब। ए अल्लाह मेरे और मेरी खताओं के, मेरे गुनाहों के दरमियान इतना फासला कर दे, इतनी दूरी कर दे जितनी मशरिक और मगरिब के दरमियान है। बहुत प्यारी दुआ है, इसमें मगफरत भी इंसान मांगता है। आप लोग चाहें तो इस दुआ को याद कर लें। जो चीज इंसान वहां चाहेगा ना, यहां पे अल्लाह से मांगे कि अल्लाह इतनी दूरी कर दे, अल्लाह आज ही इतनी दूरी कर दे, दुनिया में ही मैं इनसे इतनी बेजार हो जाऊं, मुझे इतनी नफरत हो जाए, मुझे इतने बुरे लगने लगे ये काम। और ये वाकई होता है, मैं वाकई आपको बता रही हूँ, तजर्बे से बता रही हूँ कि वही चीजें जो एक दिन इंसान को बहुत पसंद आती है ना, अल्लाह की तरफ से ऐसी नफरत पड़ जाती है उनके लिए कि इंसान उनको बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, फिर अल्लाह ताला ऐसी दूरी डाल देता है। तो अगर आपके दिल में वाकई ये तलब होगी ना, तो आज जिन जो गुनाह आपको बहुत पसंद आते हैं ना, ये दुआ करें, उन गुनाहों को सोच के करें, अल्लाह इतनी दूरी डाल दे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी कि क्यामत के दिन ये गुनाह मेरे साथ चिमटे हों और इनको लेके मैं तेरी अदालत में खड़ी हूं। तो ये जो बुरे आमाल है ना, आज मांगे इनसे पनाह, इनसे दूरी। वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है। अल्लाह के सामने खड़े होने से डरो, इस बात से डरो कि अल्लाह के सामने हाजिरी होनी, अल्लाह डराता है। इस बात को ही तो हम भूल जाते हैं, डरना तो हम चाहते ही नहीं है। हम कहते हैं डराने वाली बातें ना करें, क्योंकि डरना नहीं हम चाहते, हमें बस मजे मजे की बातें बताते जाएं, वो हमें अच्छी लगती हैं। डर, आप डराते क्यों हैं? यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है अल्लाह डराता है तुमको, फिर आप भी डरोगे कि नहीं? वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, और अल्लाह बहुत शफकत करने वाला है अपने बंदों के साथ। अब ये जहन में आती है बात कि एक तरफ तो कहा जा रहा है अल्लाह अपने आप से डराता है, फिर दूसरी तरफ कहा जा रहा है अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, तो ये क्या बात हुई? तो बात यह है कि एक डर ऐसा भी होता है, जैसे कोई आप किसी से आप बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, तो आपको ये हर वक्त डर रहता है कि हाय मैं इसकी नजरों से कहीं गिर ना जाऊं। जो मुझे इतना प्यार करता है, जो मेरे पर अपनी रहमतें लुटा रहा है, कहीं इसमें कमी ना आ जाए, कहीं वो अपने नजरे करम मुझसे हटा ना ले, कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं अपने बंदों पे मेहरबान हूं, लेकिन तुम्हें अपने आप से डराता भी हूं। डराता इसलिए हूं कि ये ना हो कि तुम्हारी आखरत का नुकसान हो जाए। जैसे माँ बच्चे को डराती है ना, तो उसका डर ऐसे नहीं होता कि कोई खौफनाक उस तरह से करके डरा रही है। उसके डर का मतलब क्या होता है? कि आप गलत अंजाम से बच जाए, आप फ्यूचर में नुकसान उठाने से बच जाए। अल्लाह ताला भी इसीलिए इंसान को डराता है, ये ना हो कि इंसान बाद में नुकसान उठाए। शायद انشاءاللہ یہاں تک تلاوت سنیں، پھر آگے دو اہم آیات آ رہی ہیں.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
اب جو میں نے آپ لوگوں کو بات کہی تھی نا کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں یو ول ہیو ٹو پروو اٹ. لیکن دنیا میں بھی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ کوئی ثبوت چاہتا ہے محبت کا. کیسے پتا چلے گا کہ آپ محبت کرتے ہیں اسے؟ کچھ ٹیسٹ ہوگا نا، کچھ کرنا پڑے گا. تو اللہ سے محبت بھی جو ہے نا وہ زبانی کلامی نہیں ہوتی کہ آپ زبان سے بول دیں بس مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے اور یہ تو بس محبت ہوگی. نہیں، اللہ سے محبت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. محبت کرتے ہیں آپ اللہ سے؟ سوال ہے آپ سے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، حال میں سب کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیں، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے آپ ان سے کہہ دیں فتبعونی، پھر میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو. اس سے کیا ہوگا؟ کیا ملے گا ہمیں؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو پہلی چیز کیا مل گئی؟ اللہ کی محبت مل گئی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرو، تو اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا. جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تیری محبت مل جائے، اس کو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اتباع رسول. اور نمبر ٹو کیا چیز آپ کو ملے گی؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. دو کتنے بڑے فائدے مل گئے، اللہ کی محبت بھی مل گئی اور گناہوں کی بخشش بھی مل گئی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. دیکھو تم لوگ دعوے تو کرتے ہو اللہ کی محبت کی، لیکن اگر اللہ سے محبت کرتے ہو نا، تو ایک زندگی ایسی ہے جس سے اللہ نے محبت کی، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب تھے، ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنا دیا اور فرمایا ان کا اتباع کرو. اتباع کیا چیز ہوتی ہے؟ جس زندگی کو اللہ نے اپروو کر دیا نا کہ یہ زندگی ہے، جس کو میں نے سرٹیفکیٹ دے دیا، اپروڈ، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اس زندگی کو اپنا لو. اتباع کا مطلب ہے کسی کی ذات سے آپ کو اتنا پیار ہو، اتنی محبت ہو جائے کہ اس کی پوری زندگی کو ہم اپنا لیں، اس کے رنگ میں رنگ جائیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس کے یہ تو بالکل اپنی لڑکیوں کو کہتے ہیں، یہ تو بالکل اپنے شوہر کے رنگ میں رنگ گئی ہے، کہتے ہیں نا، بالکل یعنی ویسے ہی سب چیزیں اپنا لی ہیں. جس چیز کو وہ اچھا سمجھے ہم اس کو اچھا سمجھیں، جس کو وہ برا سمجھے ہم اس کو برا سمجھیں، جو ان کی پسند ہو وہ ہماری پسند بن جائے، جو ان کی ناپسند ہو وہ ہماری ناپسند بن جائے. پریکٹیکلی اس کو اختیار کرنا، یہ ہے اتباع. سمجھ لیں کہ آپ نے نقل اتارنی ہے، اور جتنی زیادہ کوئی نقل اچھی اتار لے گا نا، وہ اتنا ہی زیادہ اوپر مقام لے لے گا، اتنا ہی اس کو اللہ کی محبت مل جائے گی. क्योंकि देखिए ना, हमें हम इंसान है, हमें कोई अपने सामने चाहिए थी, कोई कोई इंसान ही चाहिए ना। इतबा अल्लाह का नहीं हो सकता, उसका इतबा नहीं हो सकता, तो उसकी इतात हो सकती है। इतात क्या है? कोई हुक्म दे तो आप उसको मान लें। इतबा क्या है? आपने किसी की लाइफ देखी, वैसी ही चीजें अपनी अपना ली। मसलन है कि वो कैसे उठते, कैसे बैठते, क्या जिंदगी में करते थे, वो तो उनको ही, इंसान का ही आप इत्तेबा कर सकते हैं ना। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी हमारे सामने है कि हम ऐसे हो जाएं जैसे सहाबा कराम थे ना, वो इत्तेबा करते थे। वो यही जो फर्क मैं इत्तेबा और इतात का आपको बताना चाहती हूँ, वो इतात नहीं इत्तेबा करते। इतात क्या है? कोई हुक्म दे रहा है, आपने मान लिया। इत्तेबा में हुक्म किसी का नहीं आया, सिर्फ उसको उसकी पसंद या नापसंद को आप जान के वो काम कर रहे हैं। देखिए इसको आपको मैं ऐसे समझाती हूँ, आपके घर में कोई प्यारा आया, आपको बहुत उससे मोहब्बत है। अच्छा, वो आपको कहता है आप मुझे पानी पिलाएं, आप फौरन उठ के पानी पिलाती हैं, ये क्या इतात? अच्छा, इत्तेबा क्या होगी? अभी उसने बोला भी नहीं, आप उसके जान गई हैं, आपका दिल, आपको इससे इतनी मोहब्बत है, आप उसके सामने पानी पेश कर रही हैं, उसने मांगा नहीं, उसने कहा नहीं, आपने उसके सामने पानी पेश किया। ये यानी इत्तेबा करना क्या है कि आपने दूसरे की पसंद नापसंद को जान लिया खुद और वैसे काम किया। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करनी है, जिन कामों का आपने हुक्म दिया उनको भी करना है, और जिन कामों का आपने हुक्म नहीं दिया, बस हमें पता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, ये चीज आपको नहीं पसंद थी, वैसे के वैसे हमने पीछे चल पड़ना। देखें इत्तेबा कैसे होती है, जो मैंने आपको बताया ना, फुट स्टेप्स को फॉलो करना। जो बंदा आगे आगे चल रहा है, वो तो पीछे नहीं देख रहा ना कि कौन आ रहा है, क्या है, उसको नहीं पता। वो थोड़ी कह रहा है आओ मेरे पीछे पीछे, इन फुट स्टेप्स पे तुम चल रहे हो कि नहीं, उसकी तो बैक है, वो आगे चले गए, अब हमें बस उसके पीछे 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 फॉलो करना। अच्छा, एक और बात भी यहां से पता चलती है, मुनकिरीन हदीस कैसे इत्तेबा करेंगे ये बताएं, जो कहते हैं हदीस ही सही नहीं, हम हदीस को मानते ही नहीं, हम तो सिर्फ कुरान को मानते हैं, उनको ये आयत उनके सामने रख दें और उनको पूछें कि इत्तेबा तुम करोगे किसकी? आप तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मानते ही नहीं है, क्योंकि आप तो समझते हैं हदीस है ही नहीं, हदीस से ही पता चलती है ना उनकी जिंदगी, किसका इत्तेबा करोगे? हवा का करोगे? हवा में करोगे? कौन आके तुम्हें बताएगा? अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया, ऐ नबी आप सिर्फ बता दें इनको, आप इनको बता दें ये बात, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा इनकी जिंदगी को। और आज हम क्या कहते हैं, हमारी जिंदगियां तो इस तरह से नहीं चल सकती, हम कैसे ऐसे चल सकते हैं, इस तरह तो लोग हमें कहेंगे ये बैकवर्ड है। अल्लाह हू अकबर, हमने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को, उनकी जिंदगी को तोड़ा ही है, वो इत्तेबा नहीं की है, सच्ची बात है। आप वाकई दिल से बताएं, हम सब एक अपने आप से सवाल पूछें, क्या हमें वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से मोहब्बत है? जरूर कह रहे होंगे सबके हाँ, लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं ऐसा नहीं है। कोई हदीस आपके सामने आ जाए तो आपको लगता है कि नहीं ये तो उस जमाने का ऐसे था, आज कहाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो देखें, सहाबा ने ऐसी इतबा की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में कीचड़ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव फिसल गया, मगर आप संभल गए और आगे चल पड़े। आप पीछे जितने सहाबा आ रहे हैं ना, वहीं कीचड़ से अपना पाँव फिसलाते हुए आ रहे हैं, अब इसका आप क्या कहेंगे? हाँ, ये होती है दीवाना वार मोहब्बत, जब ऐसी मोहब्बत होती ना तभी इतबा होती है, जिसे मोहब्बत ना हो उसकी इतबा नहीं कर सकते आप। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली इकट्ठे जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद लंबा था और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का छोटा था, अब रास्ते में एक दरख्त आया, उसकी वजह से कहीं कोई शाख निकली होगी बाहर को, तो सर ना लग जाए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर झुका लिया और इस दरख्त के नीचे से गुजरे। हजरत अली को झुकाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो वहां से झुक के गुजर रहे हैं कि आप जो इस तरह कर रहे हैं मैं भी वैसे ही करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए, अपने जूते उतार दिए, पीछे सारे सहाबा कराम जूते उतार रहे हैं। आपने वजह पूछी, तुमने क्यों उतारे आज? उन्होंने कहा आपने जो उतारे थे। आपने फरमाया मेरे जूतों पर तो गंदगी लगी हुई थी, मुझे जिब्राइल ने आके बताया। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा आप क्यों उतारे हैं, हम क्यों उतारे हैं, आगे पीछे तो कभी उतारते नहीं, आज क्या हो गया। एक सहाबी थे, बहुत बाद की बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद की बात है, कि उस वक्त की जो कोई बड़ी कुव्वत थी, कोई बड़ी सुपर पावर जो सो कॉल्ड है, उनके यहाँ गए तो उन्होंने खाना वाना पेश किया तो रोटी गिर गई उनके हाथ से। अब वो इतनी बड़ी एम्पायर के मालिक, वहां पे जो सोचें जो शानो शौकत होगी, इनके हाथ से रोटी गिर गई ना तो उठा के और झाड़ के खा ली। दूसरे सहाबी ने कहा ये क्या, वो क्या सोचेंगे, क्या आप ये क्या कर रहे हैं। फरमाया क्या मैं इनकी खातिर अल्लाह के रसूल का तरीका छोड़ दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया ना कि ऐसी खुश्क चीज हो आप झाड़ के उसको खा लें। और सहाबा को तो देखें और उसके बाद के लोगों को देखें। आपको पता है जो हदीस के उस्ताद होते थे, मुहद्दिसीन होते थे ना, मतलब सहाबा का तो मैं कहती हूँ बहुत ही बुलंद दर्जा, लेकिन मुहद्दिसीन की भी मैं आपको बात बताती हूँ कि जब वो हदीस पढ़ाते थे ना, हदीस पढ़ाते पढ़ाते क्या करते थे कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे जिस वक्त आपने वो हदीस सुनाई थी, उस तरह बैठते थे और फिर सुनाते थे। यानी ये तो रीसेंट जमानों की बात है कि कोई एक आलिम दीन को कोई जगह हदीस पढ़ने गए, हदीस पढ़ाने वाले जो थे वो एक खास अंदाज में बैठ गए। तो ये जो स्टूडेंट गए थे, इन्होंने कहा कि ये तो हदीस में लिखा हुआ नहीं है। कहने लगे हाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 1400 साल से इस हदीस को ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, हर पढ़ाने वाला इस खास अंदाज में बैठ के दिखाता है और सहाबा और मुहद्दिसी ने इसका इत्तेबा किया। हदीस में नहीं लिखा हुआ, मगर ये नस्ल दर नस्ल इसी तरह चलता आ रहा है कि अपने शागिर्दों में ये बात वो मुंतकिल कर रहे हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी तो हमने देखा था कि यूं बैठे हुए थे। ये होता है इत्तेबा, एक एक अमल को अपना लेना, दिल की गहराइयों से अपना लेना, मोहब्बत से अपना लेना। जैसे हर एक बंदा किसी ना किसी को तो फॉलो करता ही है ना, आपने देखा कि यंगस्टर्स ये फिल्मों के हीरों को, इनको इस तरह, इसका लाइक, इसका हेयर स्टाइल ऐसा, इसका, इसके कपड़े आजकल ऐसे पहन रहा है, इसके फलाने का ऐसे, उसको अपनाते हैं ना। कोई स्पोर्ट्स वाले होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनके अपना लेते हैं। तो हमें कहा क्या, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, तुम्हें तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, इधर उधर किसी और को इत्तबा करने की जरूरत नहीं, तुम ये जिंदगी लेकर आओ। और हमने क्या समझाया, अच्छा एक बात को और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जब हम इत्तबा सोचते हैं ना, हमारे जहन में क्या आता है, मिसवाक कर ली, खाने के बाद मीठा खा लिया, अच्छा दो चार और चीजें, दाढ़ी मर्द है तो दाढ़ी रख ली, और कुछ दो चार चीजें हम अपनी सोच लेते हैं कि बस ये इत्तेबा हो गया, दाएं तरफ सो गए इस तरह से कर लें, ठीक है ये बहुत अच्छी बात है, ये इत्तेबा है। सहाबा ने ऐसे ऐसे कामों में भी किया कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि दरख्त के नीचे से भी झुक के जा रहे हैं, सही है ये बात, लेकिन हम सब ये बात भूल जाते हैं कि ठीक है ये तो तरीके हैं, लेकिन कौन सी ऐसी सुन्नत है मुझे बताएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी के ऊपर हावी है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन और रात का मशगला बन गई थी, जिसके लिए आप तड़पते थे, जिसके लिए आप रोते थे, जिसका गम आपने लगा लिया था, वो कौन सी सुन्नत है, उसका किसी को पता ही नहीं। दाढ़ियां भी रख ली, मिसवाके भी पकड़ ली, जूता भी पहनने का पता चल गया, किस पैर में पहले पहनना है किस में बाद में पहनना है, ठीक है जरूर इन सुन्नतों को फॉलो करो, लेकिन आपकी तो सारी जिंदगी इस दीन की दावत में, इस दीन को पहुंचाने में, इस दीन को फैलाने में इसमें गुजर गई। ये सुन्नत आपको नहीं याद रहती, क्योंकि वो सुन्नतें आसान आसान है, जरा थोड़ी वो है, उनमें कोई मसला नहीं है, इसमें तो मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मुशक्कत है। वो सुन्नत जो सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे हावी है, जो आपका मिशन था, उसको हम भूले पड़े। वो सुन्नत किसी को भी नहीं याद इल्ला माशाल्लाह। उस सुन्नत को अपनाने की भी नहीं फिक्र, क्या उसमें इत्तबा नहीं करना? ये है सबसे बड़ा इत्तबा, किस हाथ से खाना है, किस तरह खाना है, कैसे खाना है, वो बारीकियों में हम जा रहे हैं, लेकिन ये दावत दीन के लिए हमने कुछ मुशक्कत उठानी है, इस सुन्नत का कोई पास नहीं रखता, किसी को याद नहीं। तो याद रखे, ये सबसे बड़ी सुन्नत है जिसको पूरा करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस दीन को अपने ऊपर भी, अपने घरों के अंदर भी जारी करना और दूसरों तक भी लेके जाना। ये क्या सुन्नत नहीं है? अल्लाह के हर हुक्म को मानने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना, क्या ये सुन्नत नहीं है? तो याद रखे, क्यामत के दिन ना जो फैसला होगा ना, वो इसी के ऊपर होगा कि कितना ज्यादा आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेबा किया। आप इसको मिसाल से समझें, आप टेलर के पास जाती हैं, उसको कपड़ा दे के आती हैं और साथ एक सिलावा सूट भी दे देती हैं, कहती है मेरा सूट इस नाप का और बिल्कुल इस डिजाइन का बना देना। अब आप दर्जी के पास ये सब छोड़ के आई, लेकिन जब लेने के लिए गई तो कहीं बाजू लंबा, कहीं पैंचा तंग, कहीं बटन उल्टे पुलटे लगे हुए, जैसा आपने बताया था वैसा है ही नहीं, तो आप क्या कहेंगी? तुम सूट वापस लो, मेरा कपड़ा मुझे दो, तुमने मेरा कपड़ा जाया कर दिया। आखिरत में भी यही होगा। अल्लाह ताला ने हमें जो जिंदगी दिया, वक्त दिया, माल दिया, सलाहियतें दी, औलाद दी, जो कुछ भी दिया, ये सब कुछ इसलिए दिया था कि आप इस नमूने के मुताबिक, जिसको अल्लाह ताला ने उसवाए हसना फरमाया, उसके मुताबिक इन सारी चीजों को काम में लाओ। अब अगर जिंदगी उस नमूने के ऑपोजिट, उस एग्जाम्पल के ऑपोजिट निकली, माल जहां खर्च करना था वहां तो नहीं हुआ, उसके ऑपोजिट निकला, वक्त जहां लगाना था वहां नहीं लगाया, इसके ऑपोजिट निकला, तो अब हिसाब दो, तुमने इस वक्त को किधर लगा दिया, जिंदगी को किधर लगा दिया? जैसे मेरे नबी ने लगाया था वैसे तुमने किया? जैसे उनके तरीके थे वैसे किए? जैसे वो गुस्से में होते थे, जैसे वो गैरत में मुजाहिरा करते थे जिस रवैये का, जैसे वो दुश्मनों के साथ होते थे, जैसे वो दोस्तों के साथ होते थे, जैसे वो घर वालों के साथ होते थे, तुम वैसे बने? हम कहते नहीं, हम तो बन ही नहीं सकते, वो तो नबी थे। तो ठीक है, वो नबी थे, मगर चलो वो मिसलन 100% तो वो 100 पे हैं, तो हम 1 पे भी अगर हैं तो डायरेक्शन तो वो ले लेना, डायरेक्शन ही वो नहीं है, उस डायरेक्शन में भी नहीं हम चल रहे। चलो 5-10 नंबर आ जाएंगे, लेकिन कम से कम वो ही तो रास्ता हो, और अगर रास्ता ही वो नहीं, और रास्ता ही किसी और का है जो हमें पसंद है ज्यादा, किसी और के तरीके पसंद है, किसी और की जिंदगी पसंद है, और ये लगता है कि दकियानूसी बातें हैं। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ मिसाल के तौर पर, सिर्फ जस्ट 1 एग्जाम्पल से आप सोचिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देवर मौत है। आजकल क्या है, देवर और भाभी तो क्या, देवर तो मतलब गोद में बैठेगा आके और उसको भाभी पैसे देगी, और देवर भाभी तो एक ही बात है। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और दूसरी तरफ हमने अपना बनाया। मैं सिर्फ एक लाइफ के उस फेज की बात कर रहा हूँ, और ऐसे बेशुमार बातें, बेशुमार बातें हैं जो किसी के सामने, आज आप वो हदीस रखे ना आपको ऐसे ही मुंह खोल के देखेगा कि ये क्या बात हो रही है, हम कोई ऐसे हैं कि जो हमारे ऊपर इस तरह से बात की जा रही है। सहाबा ने तो कोई क्वेश्चन नहीं किया। एक सहाबी ने सोचे, बाहर से आए हैं ना, बद्दू थे वो, बाहर से आए, देखा एक ही दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे, देखा उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते के बटन खुले हुए थे, सुभान अल्लाह, उन्होंने सारी जिंदगी अपने कुर्ते के बटन ही बंद नहीं किए कि मैंने जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था ना, तो इस तरह देखा था। ये उनकी इतनी वालेहाना मोहब्बत इससे पता चलती है। वो कोई क्वेश्चन नहीं करते थे, वो कोई बातें नहीं बनाते थे, नहीं आज तो ये नहीं, कल तो वो था, फलाना तो ये था, ये इसकी क्या बात हो गई, ये क्यों हो गया, ये तो सुन्नत है, ये तो हम नहीं है वो कर सकते, ये चीजें नहीं थी उनके अंदर। इत्तेबा थी बस। जैसे आप किसी से इतनी मोहब्बत करते हो ना, बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, तो उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कोई बात, वो मुंह से अभी बोलता भी नहीं है, आप उससे भी पहले उसकी जो पसंद नापसंद को जान लेते हैं और आप वैसे ही करने लगते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने नबी के इत्तेबा की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमसे इत्तेबा करवा लेना। हम जो अपने आप को समझते हैं ना कि हम बड़े दो चार चीजें करके तो हम पता नहीं कितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही नहीं मालूम कि क्या थी। जरा कभी सीरत को तो पढ़ के देखें, पहले तो पता तो चले ना उनकी जिंदगी थी क्या। जब यही नहीं पता तो फिर क्या किस चीज को फॉलो करेंगे, कोई बात है ना, फिर हवा में फॉलो कर रहे होंगे, क्या क्या फॉलो करेंगे आप। जिसकी लाइफ को आपने फॉलो करना है उसका ही नॉलेज नहीं है। तो अगर आपको अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो ये काम करना पड़ेगा। अगर आपको अपने गुनाहों की बख्शिश चाहिए तो इनकी जिंदगी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका वाकई दावा सच्चा है अल्लाह से मोहब्बत का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करनी पड़ेगी। कुल अतीउल्लाह व रसूल, कह दीजिए इताअत करो अल्लाह की और रसूल की, यानी जब वो हुक्म दें तो उसको मानो। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा युतीअ रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो रसूल की इताअत भी अल्लाह की इताअत है, क्योंकि रसूल भी क्या बात कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं जो अल्लाह ने फरमाया। फइन तवल्लौ, अब इस बात को आप हाईलाइट कर लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फइन तवल्लौ, अगर वो मुंह मोड़ जाए, किस चीज से मुंह मोड़ जाए, इताअत से, हमने नहीं इताअत करनी, हमसे नहीं होती, हमसे रसूल का कहना नहीं माना जाता, हमसे अल्लाह का ये हुक्म नहीं माना जाता, तो क्या है, फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। फिर यहां पे काफिर कौन कहा गया, किसको कहा गया काफिर, कौन है काफिर, यहां पे तो नहीं कहा जा रहा कि कोई, काफिरों की तो बात ही नहीं हो रही थी, फिर काफिर लफ्ज क्यों आया। काफिर वो हैं यहां जो इताअत से मुंह मोड़ते हैं, जो कहते हैं हम नहीं कर सकते। समझा गई बात, जिसने ये कहा मैं अल्लाह की इताअत नहीं कर सकता, जो उस इताअत क्या होती है, किसी ने कोई हुक्म दिया तो उसको मान लो, मैं रसूल की इताअत नहीं कर सकता, अल्लाह के नजदीक वो काफिर है। अब अपने आप को चाहे मुसलमान कहलाते रहें, चाहे मुसलमानों के खाने में अपना नाम लिखते रहें, जो कहें हम हदीस को ही नहीं मानते, वो किसकी इताअत करेंगे बताएं। हम कुरान को तो मानते हैं, हदीस को नहीं मानते। अतीउल्लाह कुरान है और अतीउर रसूल हदीस है, इन अदर वर्ड्स अल्लाह की इताअत कैसे करोगे। अब फरिश्ता आएगा क्या हमारे पास कोई बात लेके, ये कुरान है ना, ये इसमें जो हुक्म दिया हुआ है वो अल्लाह की बात है। अगर आप कहती हैं मैं ये आयत मैं तो नहीं मानती है, ये नहीं, मुझे नहीं समझ आती है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वेल, मतलब बहुत जैसे बाज लोगों को बहुत एलर्जी सी हो रही होती है ना, तो वो बहुत इस तरह से करते देते हैं, नहीं नहीं ये नहीं, तो मुंह मोड़ोगे, काफिर हो। और दूसरी बात ये, अल्लाह को मोहब्बत नहीं है फिर काफिरों से। जितने मर्जी तुम इस्लाम के दावे करते फिरो, जो मर्जी करते फिरो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और रसूल की इताअत वो कहां से होगी, कहां से रसूल के फरामीन पता चलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ये करो ये ना करो, देखो ऐसे है, इसके ऊपर लानत है, इससे मना किया, वो हम में से नहीं है जो ऐसा करे, ये बातें कहां से पता चलती हैं, हदीस से पता चलती हैं। अब जो हदीस का इनकार कर दे कि मैं हदीस नहीं मानती, या जो ये कह दे कि मैंने इस हदीस को नहीं फॉलो करूंगा, हदीस ही है ना, कोई कुरान तो नहीं है, मैं नहीं फॉलो करूंगी, तो फिर वो कुफर कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उसके जिसने इनकार किया। तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह किसने इनकार किया, फरमाया जिसने मेरी इताअत की उसने वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। नाफरमानी किस चीज की होती है, हुक्म की नाफरमानी होती ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुक्म को नहीं मानता उसने इनकार कर दिया, तो ये हदीस से साफ वाजी है कि वो तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो कितने ही सारे काम है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए, कितने ही सारे काम है जो हदीस में है कि ये मना है, ये नहीं करने हैं, लेकिन हमें परवाह ही नहीं, हम कहते नहीं इनके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। अब एक औरतों के लिए मसलन मिसाल के तौर पर आईब्रोज बनाने का मसला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी ऐसी औरतों के ऊपर, लेकिन वो हम कहाँ छोड़ सकते हैं, उसके बगैर तो हमारा फैशन पूरा नहीं होता, बुरे लगेंगे, तो फिर क्या इताअत क्या रह गई। और भी कई सारे मसले मसाइल ऐसे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरतें जो ऐसा लिबास पहन के निकलती हैं, जो जो ऐसी औरतें मैंने अभी तक नहीं देखी जो लिबास पहन के भी नंगी हों, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, लेकिन हमें क्या परवाह पड़ी हुई है, लिबास पहन के भी नंगी फिर रही है, लिबास भी पहना हुआ है लेकिन ऐसे ही है जैसे नंगी है, इतने टाइट कपड़े पहन लिए, गर्मियों में इतने सी थ्रू कपड़े पहन लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को सिर्फ ये फरमाया था कि तुम रास्ते के बीच में ना चलो मस्जिद से निकलते वक्त, कि मर्द भी होंगे, तो वो इतनी घिसट के चलने लगी इनके रास्ते के साथ, यानी दीवार के साथ होके, इतनी के अपने आप को घिसट के जैसे चलता है इंसान, इस तरह से हो गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया। एक हुक्म था हिजाब का, आया अल्लाह का हुक्म आ गया, तो कोई औरत घर से इस तरह से नहीं निकल रही कि मैं कोई बात नहीं दो चार दिन में इसको पूरा कर लूंगी, नहीं, सुबह नमाज के लिए जाना है तो आज रात चादरें सिल रही हैं। सुभान अल्लाह, शराब की हुरमत का हुक्म आया तो उंडेल दिए गए शराब के सारे बैरल्स, घरेलू जो गधे पालतू गधे थे उनकी हुरमत का आ गया कि ये हराम है खाना, तो उबल नहीं थी हंडियां और गोश्त उल्टा दिया गया, ये नहीं उन्होंने कहा हम अभी खा लेते हैं कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, उस वक्त तो नहीं ना हमें पता था जिस वक्त हम पका रहे थे, अब जाया होगा, नहीं, हमारे तो हीले बहाने खत्म नहीं होते ना। लेकिन इताअत अल्लाह और उसके रसूल की करना यहाँ पे कितना जरूरी है, ये आपको इस बात से पता चल रहा होगा, इन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है जिसको हम ये सोचेंगे कोई बात नहीं। हाँ ये अलग बात है कि हाँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा काम किया जो कि आपने उसका हुक्म नहीं दिया लेकिन आपने किया था, और आप नहीं वो करते तो चलो गुनाह नहीं होगा, लेकिन जिसका आपने हुक्म दे दिया ना, इताअत, इसीलिए इताअत के आगे ये बात कही गई, जिसका हुक्म दे दिया ये करना है या ये नहीं करना, उसको नहीं आप छोड़ सकते। जिसमें हुक्म नहीं है, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना वो तरीका था, वो अगर आपने छोड़ा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, उतना अजर नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर आप इत्तेबा नहीं करते अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलेगी, गुनाहों की बख्शिश उस तरह से नहीं होगी, और जो इताअत से निकल गया काफिर हो गया, अल्लाह को उससे कोई सरोकार नहीं। तो नोट करें इन आयात को, बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो आपको कहे कि मैं हदीस को नहीं मानता उससे इन आयात का सवाल करें, क्योंकि ये फितना भी आजकल बहुत फैल रहा है, अल्लाह ताला इससे महफूज रखे हमें भी और हमारी नस्लों को भी, अल्लाह ताला अपने नबी की इत्तेबा की हमें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की हमें तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। शात्री की आवाज में लगाएं इंशाअल्लाह ताला सारे सबक का, इंशाअल्लाह हम तिलावत सुनते।
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين